Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Pili Pokhar Dham ki, Nityananda Prabhu ki, Nityananda Prabhu Avibhav Mahotsav ki, Nityananda Trayodashi ki, Nitai Gauranga Haribo. आज के इस इतवार के दिन 5 फरवरी को आपका पीली पोखर धाम में स्वागत है। हरी बोल। बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत ही सुंदर, मन को लुभावने वाला, मन को आनंद देने वाला, राधा कृष्ण को परम आनंद देने वाला स्थान है। इसलिए सब लोग बड़ी सतर्कता से यहाँ बैठिए। जिसको ठंड लग रही है, जिसको नींद आ रही है, सब लोग खड़े हो जाइए और अच्छी तरह से, हाँ, जिसको कष्ट हो रहा है वो, क्योंकि तो हमारा ये यात्रा का आखिरी दिन है और राधा रानी की परम कृपा से हम लोग इतने दिन यहाँ पर, आप लोगों ने सेवा करने का मौका मिला है आपको। आपको आज हृदय से प्रार्थना करनी है कि राधा रानी आपको दोबारा बुलाएं, बार बार सेवा दें और इससे अच्छी चेतना से, अच्छी भावना से आपको यहाँ पर कथा में भाग लेना है, उस तरह से मुझे भी प्रोत्साहन देना है। आई ऑल्सो नीड एनकरेजमेंट फ्रॉम योर साइड। हाउ कैन यू एनकरेज मी? बाय बीइंग अलर्ट एंड अवेक,
हरि
बोल, हरि बोल,
हरि बोल।
ऑल दोज़ हू वांट टू एनकरेज मी से हरि बोल,
हरि बोल।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो राधा रानी का धाम भी बड़ा अद्भुत धाम है। देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ पर। हर प्रकार के पवित्र वृक्ष हैं। देखो तो यहाँ पर बरगद का पेड़ है, यहाँ पर कदम का वृक्ष है, तो यहाँ पर नीम का पेड़ है, वहां पर अश्वत्थ यानी कि पीपल का वृक्ष है। अलग प्रकार के सुंदर 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 वृक्ष यहाँ पर, जितने भी सुंदर पवित्र वृक्ष होते हैं सब यहाँ पर होते हैं। फिर मोर का बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर निवास है। हाँ, जहाँ पर सघन वृक्षावली होती है वहां पर मोर निवास करते हैं। के लिए बहुत जंगल जैसा वातावरण चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर तोता आते हैं, कबूतर आते हैं, चिड़िया आती है, कोयल आती है, सब लोग अपना प्रेम का गीत गाते हैं भगवान की, राधा रानी के आनंद के लिए। सब जीव चराचर सृष्टि जो है यहाँ की, सब राधा रानी और भगवान को आनंद देने के लिए अपने जीवन को समर्पण करती है। हर जीव ब्रज में जन्म लेता है राधा रानी की इच्छा से लेता है और वो जीव अपना जीवन हमेशा तन मन से, भावना से, चेतना से, हृदय से भगवान की सेवा को अपने आप को लगाता है। आपको देख के लगता होगा अरे कितना हरा रंग का मॉस भरा हुआ। एक्चुअली वो मॉस नहीं है, वो एक प्रकार का वेली है जिसका रूट जो है जल के अंदर है और उसके पत्ते जल के ऊपर है। जैसे आप बाजू में करेंगे आपको एकदम शुद्ध पानी नीचे मिलेगा। बाकी लोगों का कलयुग का जो प्रभाव है प्लास्टिक का आपको दिखाई पड़ता ही है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि प्लास्टिक जो है वो आप दूर रखिए अपने जीवन में, क्योंकि प्लास्टिक से अपनी चेतना भी खराब हो जाती है, वातावरण भी खराब हो जाता है। लेकिन जल जो है बहुत शुद्ध है और आप लोगों को उसमें श्रद्धा से आचरण भी करना है, क्योंकि बाहरी अशुद्धि से कभी भी धाम अशुद्ध नहीं होता है। धाम एक परम वस्तु है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। परम वस्तु कभी भी किसी भौतिक वस्तुओं से दूषित नहीं होती। जैसे गंगा जल है उसमें दूषित नहीं होता है। गंगा जल की शक्ति, गंगा जल का प्रभाव, उसमें कितना भी मैल अगर डालते हो आपको भी कम नहीं होता है। उसी प्रकार से श्रद्धा से हम ये पूरा जो आध्यात्मिक शक्ति और बल यहाँ उपलब्ध है वो केवल श्रद्धा के साथ में हम बटोर सकते हैं। अगर हमारी बुद्धि के साथ बटोरना कोशिश करेंगे तो बुद्धि कहेगी अरे ये तो साइंटिफिकली बैक्टीरिया है उसके अंदर, तो कोई बुद्धि कोई नॉलेज आपको बताएगा कि इसमें बहुत सारा मैल है, मौत है, हेल्थ के लिए खराब है, चमड़ी के लिए खराब है। ऐसे बुद्धि से काम लेंगे तो बुद्धि हमारी जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि का मतलब है तीन गुणों से प्रभावित है वो बुद्धि। भले हम डॉक्टर होंगे, पीएचडी होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बड़े बड़े व्यक्ति होंगे, साइंटिस्ट होंगे, हमारे पास बहुत सारा साइंटिफिक डेटा होगा, लेकिन फिर भी वो जड़ बुद्धि है क्योंकि वो भौतिक दुनिया के वास्तविकताओं से बद्ध है। इट इज कंडीशनड बाय दी नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन जो आत्मा है भगवान के अंश है और वो आध्यात्मिकता यानी कि श्रद्धा और प्रेम पर चलती है। उसकी खुराक और उसका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो प्रेम भक्ति सेवा इस खुराक पे चलती हो। और वो श्रद्धा इतनी इतनी पावरफुल चीज है कि वो भगवान को आपको मिला सकती है, इतनी पावरफुल चीज। इसलिए बुद्धि हमारे पास बहुत होगी, हम बहुत सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर, नर्सेस हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बुद्धि अगर यहाँ ज्यादा दिखाई पड़ती होगी एजुकेशन के द्वारा, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त करने के लिए वो बहुत छोटी सी अनुमात्र है। लेकिन उस छोटी सी बुद्धि में भी अगर हम श्रद्धा का बीज बोते हैं और श्रद्धा का रूपांतर अगर निष्ठा में होता है भगवान का भजन करने से, तो उस निष्ठा के आधार पर आप भगवान को खींच सकते हैं, भगवान उस निष्ठा और श्रद्धा के वश में हो जाते हैं। हमारी भक्ति में हम लोग सीखते हैं कि जब हम कोमल श्रद्धा लेकर जप करना आरंभ कर देते हैं और भगवान के भक्त का संग करते हैं, उसमें हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए चार नियम का पालन करते हैं हम लोग, मांस नहीं खाते हैं, कोई नशा सिगरेट दारू तंबाकू बीड़ी गुटखा नहीं करते हैं, चाय कॉफी तक नहीं पीते हैं, शुद्ध आहार भगवान को अर्पण करके प्रसाद देते हैं, कोई नशा नहीं करते, कोई जुआ नहीं खेलते हैं, और विवाह के बिना परस्त्री पर पुरुष संबंध नहीं करते हैं आत्मा को शुद्ध रखने के लिए। इन चार नियमों का पालन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, नियमित रूप से भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, धाम में निवास करने का प्रयास करते हैं, धाम में सेवा करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, भगवान के अर्थ विग्रहों की पूजा करते हैं, भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं, ये सब कुछ कार्य नित्य रूप से करने से क्या होता है, इसको भजन क्रिया कहते हैं। ये सब कार्य करना मतलब भजन क्रिया, इसके करने से अनर्थों की निवृत्ति होती है। जो हमारे अंदर अनर्थ है, पापी प्रवृत्तियां हैं, भगवान को भूल कर भगवान को छोड़कर जीने की तमन्ना है, भोग लेने की तमन्ना है, भगवान को अलग रखे स्वतंत्र रूप में इस जीवन में चलाने का हमारा प्लानिंग है, उसको अनर्थ कहते हैं। उन अनर्थों को धीरे धीरे हम नष्ट कर सकते हैं, को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। और जब पूरी तरह से अनर्थ जो है, अहंकार काम क्रोध लोभ मद मोह द्वेष मत्सर गर्व उद्दंडता, इन सभी भावना से वह मुक्त हो जाते हैं, तब हमारे श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होता है। और वो निष्ठा ऐसी है कि वो निष्ठा इतनी दृढ़ और इतनी मजबूत होती है कि कोई भी माया का अटैक जो है उस निष्ठा को हिला नहीं सकता है। कोमल श्रद्धा की अवस्था में माया का कोई अटैक हो गया तो श्रद्धा नष्ट हो सकती है, चूर हो सकती है, लेकिन जब भजन क्रिया करने के बाद अनर्थ निवृत्ति होने के बाद जब निष्ठा उत्पन्न होती है तो निष्ठा के आधार पर ही आगे जाकर भगवान के लिए रुचि, भगवान के लिए आसक्ति, भगवान के लिए भाव उत्पन्न होता है, तो प्रेम उत्पन्न होता है, और इस प्रेम के कारण ही भगवान वश में हो जाते हैं। इसको शुद्ध भक्ति मार्ग कहते हैं। और शुद्ध भक्ति मार्ग का विशेषता यह है कि केवल शुद्ध भक्ति मार्ग से ही भगवान आकर्षित हो सकते हैं, और किसी भी वस्तु से हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। लोगों को बुद्धि है कि हाँ वहां देखे आप कथा सुनेंगे, तो यज्ञ कर्म करने से, कर्म कांड करने से, दान धर्म करने से, पुण्य करने से, ज्ञान कांड बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने से और तपस्या करने से, तो तपस्या करने से भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा है तपस्या केवल करेंगे तपस्या के लिए तो हृदय जो है कोमल बनने के बदले में सख्त बन जाता है पत्थर की तरह। तब तपस्या भगवान के नाम के साथ की जाती है, भगवान के लिए की जाती है, तो उस तपस्या से ही केवल हृदय कोमल बन जाता है जिसमें भगवान बस सकते हैं। और केवल अपने लिए अगर तपस्या करते हैं किसी कारण से, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई बल प्राप्त करने के लिए, कोई ऐसा अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे तपस्या से भगवान दूर चले जाते हैं, भगवान प्राप्ति नहीं होती। ये बात समझना बहुत जरूरी। हम लोग तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ असुविधाएं वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, वो तपस्या भगवान को आकर्षित कर सकती है। केवल सिंपल तपस्या करेंगे, बोलेंगे हम केवल दूध पीते हैं, हम कुछ नहीं खाते, हम फलाहारी हैं, ऐसे तपस्या से भगवान बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते। लेकिन जो गोपियां सिंपल गांव की लड़कियां हैं उनके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि वो भावक राही जनार्दन है, वो किसी भी कार्य का केवल भाव जो है उसको ग्रहण करते हैं, उसकी मात्रा, उसका वॉल्यूम, उसकी कितना बड़ा है वो, इसको देखकर वो बस प्रभावित नहीं होते। हृदय की सरलता, प्रेम, भक्ति, समर्पण, सेवा, दिल की सरलता, इस बात से भगवान प्रभावित होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहां से जाने के पहले ये सब धन बटोरने का प्रयास करें। हृदय की सरलता मतलब डुप्लिसिटी, द्वंद्व नहीं होना हृदय में, सामने एक पीछे एक, मुंह से कुछ बोल रहे हैं मन में कुछ और है, ये सब माया के प्रभाव में जो लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है। जो कृष्ण के वश में होते हैं, जो कृष्ण की भक्ति में होते हैं, जो जीवित होते हैं, हाँ जीवित उनको ही कहा गया है जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, बाकी सब जीवंत शव समान आ गया। तो हम सबको इन भावों को यहां पर ग्रहण करने की आवश्यकता है, और ये भाव ग्रहण करके बंबई जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद, पुणे जाने के बाद, अपने घर जाने के बाद में भगवान का भजन, इस धाम का सार जो हमने हृदय में स्वीकार किया है उसको हृदय में परवरिश करने की बहुत आवश्यकता है। ये यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, अभी सही यात्रा शुरू होती है। क्या आपने पाया इस यात्रा के माध्यम से, उसके कसौटी घर पहुंचने के बाद होगी, घर पहुंचने के बाद क्यों, ट्रेन में बैठने से होगी, तुरंत तक वातावरण बदलेगा तो कितना आपने ग्रहण किया है वो आपको मालूम पड़ेगा, कितना आप तुरंत बदल जाते हो, कितना क्रोध आता है, कितना मति बदल जाती है, ये तुरंत आपको पता चलेगा जब आप ट्रेन में बैठ जाओ। इसलिए बटोरने का जगह ये है, यहां बटोर दो तो आपको आगे काम आए। तो ये जहां जो है हृदय में पवित्रता और दिव्यता उत्पन्न करने वाला स्थान, इसलिए इस स्थान की बाहरी दृष्टि को आप मत देखो, बाहरी नजारे को मत देखो। बाहरी नजारा भी बहुत आकर्षक है लेकिन आपको लगता हुआ गंदगी है, ये है, वो है, तो इस सारी दूषित चेतना से आप मुक्त रहो, और हृदय से इस धाम का जो आस्वादन है, सेवा है, भक्ति है, श्रद्धा से उसको ग्रहण करने का प्रयास। तो ये श्री जी का बरसाने के अंदर का बहुत पवित्र स्थान है पीली पोखर, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि चार चीजें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, खोर खिरक गिरी गहवर, खोर यानी रास्ता, खिरक यानी जलाशय, गिरी यानी पर्वत, और गहवर यानी गहवर बन, तो उसके से एक खिरक यहां पर है आपके सामने, पोली पीली पोखर, पोखर यानी जलाशय जहां पर जल का पद्मभाव है, बहुत सुंदर घाट बनाए रखे हैं, बहुत पक्ष पंछी आते हैं, भगवान के लिए गीत गाते हैं, उनको पुकारते हैं, भगवान भी नित्य निवास करते हैं यहां पर, एक कदम भी इस वृंदावन बरसात के बाहर निकालते रहते हैं, हमेशा यहां पर प्रेम का आस्वादन करते रहते हैं। तो एक बार अभी हम आज की यात्रा में एंड में वहां पर जाएंगे, लास्ट में हम उसका नाम का जगह का स्थान है गहवर कुंड, जो गहवर वन में है, जो राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है, गहवर कुंड गहवर वन के साथ साथ, और वो ब्रह्मा जी की नाभि कहलाई है, ये चार पर्वत जो है वो तो चार शीश है ब्रह्मा की, और गहवर कुंड जो है ब्रह्मा की नाभि मानी गई है। इसके किनारे में राधा रानी छोटी सी थी, छोटी सी बालिका, अपने सखियों के साथ में घर घर का खेल खेलते, घर का मतलब पता है ना आपको, कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई बच्चे बनते हैं, रसोई बनती है, यहाँ सब खाना बना के खिलाते हैं, सब कुछ खेल खेल में होता है। तो राधा रानी उस गहवर कुंड के किनारे में मट्टी से ही सारा खेल खेल रहे थे, सब कुछ मट्टी का, रसोई मट्टी की, व्यंजन मट्टी के, बर्तन मट्टी के, वो बनाया हुआ रेडीमेड आइटम मट्टी का, और सब मट्टी, केवल सखियां केवल जीव। तो वो खेल में इतने मग्न थे, ये बात विशेष समझना जरूरी है हमको। कल मैं किचन में गया था और जहां रोटी को वो खुला रहे थे सिगड़ी में, वहां पर खड़ा था मैं कुछ देर के लिए, तो एक माता जी को मैंने तीन चार बार पुकारा पीछे से, लेकिन उनको सुनाया नहीं पड़ा, वो इतनी मग्न होकर रोटी को घी लगा रहे हैं। मैं चलो उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप सबके लिए कह रहा हूँ, आपको भी मैंने देखा सब लोगों, कुछ लोग गीत गा के, ब्रज के गीत गा के रोटियां बेल रहे थे, जो बड़ी ध्यान से सब्जी को हिला रहे थे ना? तीन चार बार पुकारने के बाद भी उनको सुनाई पड़ा जोर से पुकारने के बाद, अच्छा लगा। तो सेवा में मग्नता जो है ना बहुत जरूरी है, बिना सेवा की मग्नता से सेवा पहुंचती नहीं वहां पर। सेवा यहां कर रहे हैं उनको वहां तक पहुंचाना ना हमको, गंतव्य स्थान क्या, डेस्टिनेशन क्या है उसका, राधा और कृष्णा के चरण को हमें पहुंचाना है। जितना हृदय से मग्नता से प्रेम से और तीव्रता से करेंगे उतना वो वहां आगे आगे बढ़ेगा, उसका बल से वो आगे आगे पहुंचेगा, तब वहां टच करेगा, उसकी जगह पर पहुंच देगा जहां पर पहुंचाना है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की भावना से, मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो राधा गोपियां इतनी मग्न थी कि वो मट्टी के व्यंजन बना रहे थे, कोई सब्जी बन रही है, कोई दाल बन रही है, कोई खीर बन रही है, और वो खा भी रहे थे इसको, सब लोगों से बहुत आनंद, कोई बीन रहे थे, कोई काट रहे हैं, सब ऐसे इस मट्टी में सब कर रहा है, ब्रज रज के साथ खेल रहे हैं। ब्रज रज जो अति पावन है, जिसको एक कण पाने के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं, ऐसे ब्रज रज के साथ में वो अपना खेल खेल रहे हैं। तो खीर बनने का प्लान हुआ, खीर बनने लगी। खीर रसोई कौन है, खीर कुक कौन है वहां पर, राधा रानी सबसे श्रेष्ठ कुक है वो रसोई। तो वो खीर बना रही है, बड़ी दिव्य खीर बन रही है ब्रज रज की, हाँ बड़े प्रेम से बना रहे हैं। और वहां से दुर्वासा मुनि आते, दुर्वासा जानते ना कैसे हैं, झट से उनको गुस्सा आ जाता है किसी भी चीज का, इसलिए उनको द्रोह लोग उनका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। दुर्योधन ने सोचा कि अरे ये बहुत क्रोधी है, इनको पांडवों के पास भेजते हैं, अच्छा होगा क्रोध भी आ जाएगा तो जरा उनको साफ भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं तो सखियां बिचारी सरल रह रही हैं, उनके मन में ऐसा कुछ पता नहीं है, कितने बड़े बाबा हैं, पता नहीं कितनी तपस्या की, हमको कुछ पता नहीं है, बाबा है महात्मा है सबको धन्यवाद करते हुए। यहाँ पर तो ऐसा भाव है कि जो कोई भोंदू भी होगा ना, कोई नकली भी होगा, लेकिन गेहुआ वस्त्र पहन के सफेद वस्त्र पहन के आएगा, पर महात्मा जी धन्यवाद करेंगे आप। वो डाकू भी होगा ना, कोई लुचक लुच्चा भी होगा, कोई लपंगा भी होगा, यहाँ पर ऐसा व्यवसाय करते हैं, जो लोगों को फंसाते हैं वो ड्रेस प्रसादू का पहनते हैं, बाल दाढ़ी बढ़ा देते हैं और फिर बड़े महात्मा बनकर रहते हैं, और यहाँ के सरल लोग उनको दान देते हैं, रोटी देते हैं, पेट पढ़ते हैं, माला पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। गोपियों को पता नहीं दुर्वासा मुनि कितने बड़े ऋषि वगैरह हैं, बोलते माबा आबा आइए खीर बन रही खाओ। दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया, कहाँ खीर, ऐसा पट्टी मट्टी है, मुझे मट्टी खिलाने का बात कर रहे हैं, अभी साफ दे दूंगा उसको, जला कर भस्म कर दूंगा। तो गोपियां बेचारी डर गई, छोटी सी बालिका बहुत आपके भाग भाग के जी महारानी गुस्सा कर रहे हैं। श्रीजी महारानी तो बड़ी सरल रही, बड़ी वाणी उनकी बहुत मधुर सम्मोहन वाली है, बहुत प्रेम से शांति से कहते बाबा इतना क्यों क्रोध कर रहे हो, ये जलाने वलाने की बात भी चल रही है, खीर तो खा लो, खीर खाने से क्या मतलब है आपको। अभी राधा महारानी के सम्मोहन वाली भाषा से एकदम दुर्वासा मुनि एकदम मोहित हो जाते हैं। रुपया उनको देती है मट्टी के बर्तन में मट्टी की खीर, वो खाने लगते हैं, इन वन सेंस पागल की तरह खाने लगते हैं। हाँ पहले तो अच्छे थे वो, बिगड़ा डाल मट्टी है, उसके बाद में तो दिखाई भी नहीं पड़ा उनको, वो खाने लगे तो उनको कोई दिव्य खीर खाने का आनंद आया और रोमांच खड़े हो गए उनके, आंखों से अश्रु आने लगे, कंपन होने लगा, गदगद हो गए प्रेम से वो, अरे एकदम गुस्से वाले दुर्वासा मुनि एकदम प्रेम में आए, एकदम अलग है। देखो ब्रज का प्रभाव कैसा है, सब दुनिया में जब घूमते हैं सब जगह गुस्सा करते रहते हैं, सब तो डरते हैं उनको, दुर्वासा मुनि आ रहे हैं स्वर्ग में जाते हैं तो सब देवता लोग अरे गरबा में गुरुआ इनकी सेवा अच्छी तरह से। वही दुर्वासा मुनि जब ब्रज में आते हैं एकदम प्रेम में पागल हो जाते हैं, पूरा भाव बदल जाता है उनका, जो कैलकुलेशन जो ना मट्टी वट्टी का ऐसा कैसा कैसा होगा, अच्छा नहीं बुरा नहीं अपमान होगा, सब खत्म हो जाता है। और इस अति आनंद के अनुभव के साथ में वो इतने आनंद विभोर हो जाते हैं, राधा रानी को वरदान देते, कहते राधा रानी आपको वरदान देता हूं प्रसन्न होकर कि आपके हाथ से जो भी बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो भी इसको खाएगा वो सभी रोगों से मुक्त हो जाए और हमेशा अपने हर कार्य में विजयी और यशस्वी होगा, ऐसा वरदान देते। सब लोग बड़े खुश हो जाते, हमारी सखी प्रिय सखी राधा रानी को इतना सुंदर वरदान मिला है, सब ब्रज में ये बात फैल जाती है, माता पिता के साथ पूरे बरसाने में नंदगांव में सब जगह ब्रज में बात फैल जाती है कि राधा रानी को श्री जी को विश्वमानो नंदिनी को इतना सुंदर वरदान मिला है। वो जाती है खबर जो है नंदगांव पहुंचती, वशोधरानी वहां पर सोच रही हमेशा मेरे लाला के लिए, कन्हैया के लिए, नंदन नंदन के लिए सबसे बेस्ट वस्तु हर समय मिलनी चाहिए। हर चीज दुनिया में जो बेस्ट है वो उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो वो चाहते हमेशा कि इस पर बहुत आतंक होता है, राक्षसों का हमला होता है, तो इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई इसके यश में, कीर्ति में, विजय में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हर समय विजयी यशस्वी होना चाहिए। ऐसे वो हमेशा शुभ चिंतन करती थी अपने पुत्र के लिए। और जब ये खबर वहां पहुंचती है तो उसको समझता है कि अभी राधा रानी के हाथ का इसको खिला है। तो कैसे पुकारे, कैसे बताएं। तो यहाँ पर एक बड़ा समारोह होता है जो मुसलमानों महाराज सबको दावत देते हैं, उसमें नंद बाबा, यशोदा मानी, यशोदा माई, कृष्ण बलराम सब सखा सब आ जाते हैं। तो यशोदा माता इस सोच के आती है कि अभी पूछना है इस बात में, इस मौके को छोड़ना नहीं। तो इस पूरे उत्सव के अंदर रसोई का पूरा काम जो है वो राधा रानी के हाथ में होगा। राधा रानी पूरा रसोई जो है हजारों और करोड़ों गोपियों के साथ अनंत चूल्हे बनाकर वो एक साथ में मैनेज कर रही है। सब बढ़िया दावत बनाने का अरेंजमेंट उसका है। इतनी कुशल है वो, इतनी एक्सपर्ट है कि सब काम जो है कि छोटी सी कन्या जो है इतनी कुशलता से कर रही है सब। बहुत बढ़िया व्यंजन का आयोजन, भगवत का आयोजन खुद कर रही है। तो वो यशोदा रानी किचन में जाके देखती है, ऐसी बुद्धिमान लड़की, इतनी सुंदर कला है उसके अंदर, इतने सुंदर गुण है, इतनी नम्र है, सुशील है। तो फिर वो कीर्ति महारानी को मिलती है और कहती है कि ऐसा ऐसा है, हमने सुना था वरदान मिला है, तो क्या हमारे काना के लिए वो नंदगांव में आके रसोई बना सकती है क्या। तो कीर्ति मैया बड़ी खुश हो जाती है, हृदय से बड़ी प्रसन्नता होती है। ये सब चाहते हैं कि कान्हा के साथ में हमारा संबंध हो, सेवा का मौका मिले। वो तुरंत हाँ हो जाती है। फिर उस दिन से यहाँ से नंदगांव जाना आरंभ होता है। कुछ अपने सखियों को लेकर रोज नंदगांव जाना और रोज भगवान को भोजन खिलाना। यशोदा माई अपने पावन सरोवर, उनका खुद का घाट है यशोदा घाट, उस पावन सरोवर के अपने घाट के पास वो एक कुआं खोद देती है मीठे पानी के लिए, जो जिसका जल राधा रानी को उपलब्ध होगा तो वहीं पर रसोई बनाती है और राधा रानी उनके लिए रोज भोजन बनाती है। कभी कभी जा पाती है, कभी नहीं जा पाती है। तो कभी कभी ऐसे वर्णन आया है कि कमरे भर लड्डू बनाकर वहां पर रख के आते, कमरा मतलब मालूम है डब्बा भर के नहीं, कमरे भर के करोड़ों लड्डू बनते होंगे उसके, उसको बंटा भोग कहते हैं। बंटा भोग जो है ना, बंटा भोग बहुत विशेष भोग है, उसको तुलसी नहीं लगती है और वो वहां ही रखा रहता है दिन रात। जब चाहे ठाकुर जी का मन करे तो वो खाने को मिलना चाहिए, रात में दिन में हमेशा वहां रखे रहते हैं और एक अलमारी में भर के रहते हैं। ऐसे भरे भरे बड़ी संख्या में उसको बनाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, इतने स्वादिष्ट होते हैं कि हमने जो गोस्वामी अपनी सेवा में अपने हाथ से वो लड्डू बनाते हैं, वो गोस्वामी हमारे घर में आए थे और उन्हीं गोस्वामी ने अपने उन्हीं हाथों से हमारे घर में वो बनाया था, फिर वो वैसा नहीं बनाओ। जो नंदा गांव का जो महात्म्य है, जो महिमा है, थोड़ी वो बॉम्बे में प्रकट होती है। इतनी सुंदर चीज है बंटा भोग कहते हैं। तो ऐसा सब रसोई बनाते हैं। देखो रोज का आना जाना, रोज देख रही है इतनी सुंदरता से, ठाकुर जी को खिला रही है। ठाकुर जी जानते हैं कि वो खिड़की से हमको छुप छुप के देख रही है कि कैसे खा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि वो देख रही है, जान बुझ के बहुत कड़वा है, बल दाऊ जी तुम खा लो, मधुमंगल तुम खा लो, ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया। ऐसे बाकी सब लोग चाव से खाते हैं, राधा रानी देख रही है और फिर वो जान बुझ के उसको मुंह डाल के बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन यशोदा रानी जो है वो रोज सोचती है कि अरे ये रोज का आना जाना डिफिकल्ट है ना, तो ये रखा जाए कैसे होगा, ये रखेंगे तो फिर वो आना जाने का तकलीफ खत्म ना। हम लोग की टीम भी यहाँ से वृंदावन से बरसाना आती है सेवा करने के लिए, अभी हम सोच रहे हैं रोज वृंदावन से आना जाना बहुत कष्ट की बात है, यही बरसाने में उनको बसा देंगे तो रोज दो मिनट में अपने काम पे आ जाएंगे। तो ये विचार मन में जो है मूल पकड़ रहा है, धीरे धीरे उसकी परवरिश हो रही है विचार की और प्रेम बढ़ रहा है। जिस विषय जो विषय होता है ना हृदय का, उसको रोज देखते हैं तो कैसा होता है, तो आपको चलो जिलेबी अच्छी लगती है और आप रोज जिलेबी के दुकान के पास से गुजरते हो तो कैसा होगा, अच्छा होगा ना। अपनी प्रिय वस्तु को रोज देखेंगे तो रोज उसका मन उसके ऊपर रोज जाएगा, विचार होगा, चिंतन होगा, मंथन होगा, आसक्ति होगी, रुचि होगी, सब कुछ होगा उसके अंदर, भाव उत्पन्न होगा, उसमें फंस जाएंगे हम। रोज देखते हैं राधा रानी को, रोज विचार करती है कितनी सुंदर कन्या है, खाना के लिए सबसे बेस्ट बहू है, इससे बढ़िया बहू और खाना को नहीं मिल सकती है। और जो भी सब कुछ जरूरी है वो सब कुछ है उसके अंदर, हर प्रकार के गुण। तो फिर एक दिन अपने भाव को वो रोक नहीं सकती, भावना ऐसी होती है ना, वो कभी कभी तूफान की तरह हो जाती है, और जब भावना तूफान की तरह हो जाती है तो फिर भय, लज्जा, मर्यादा, नीति, नियम सब भूल जाते हैं आदमी। एक बार भाव में आ गया ना कभी किसी चीज के, जैसे शकुंतला जी थी वो दुष्यंत के लिए कहते हैं कि इतनी नाजुक और कोमल थी वो, और दुष्यंत के प्रेम में जब वो पागल हो गई तो वो महल छोड़कर जंगल में बीच रात को भाग के गए उसको मिलने के लिए। और जब मिलन हुआ सब कुछ हो गया, उसके बाद में जब उसको कहा गया, पता है कहां से भाग के आई तुम, ये जंगल में खूंखार जानवर है, ये वो है, जब तुम्हें पता ही नहीं चला। तो कहते हैं कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, जब कोई काम मतलब कोई इच्छा से पागल हो जाता है तो उसको कोई चीज भय, लज्जा, मर्यादा को रोक नहीं सकती है। वैसे भावातिरेक मतलब भाव के अतिरेक से रानी जो है मोहित हो जाती है। और एक दिन राधा रानी को बड़े प्रेम से गले लगाती है, बहुत चुंबन करती है, बहुत दुलारती है उनको, तुरंत रसोई में जाके हल्दी निकालते उसके हाथ में बन ले। इसका मतलब होता है कि वाद निश्चय, एंगेजमेंट, कोई किसी शादीशुदा जो नहीं है ऐसी कन्या को हाथ में हल्दी लगाना संभाल के लगाना, मेहंदी लगा सकते हो लेकिन हल्दी मत लगाना। हल्दी लगाना मतलब अपनी बेटी के साथ शादी हो रही है उसकी, इसका मतलब ये होता है। कम से कम इंडिया में तो ऐसा मतलब होता है, फॉरेन में मुझे पता नहीं। फॉरेन में क्या है, कोर्ट में जाओ साइन करो, पति पत्नी माला भी नहीं पहनाते, हमारे यहाँ तो कम से कम माला पहनाते फ्लावर एक्सचेंज। तो ऐसे हल्दी लगा देती है और बहुत प्रेम से और आनंद से रोती है। राधा रानी के मन में बहुत खुश हो जाती है आनंद से कि उनके मन में भी उनका जो वर है वो कान्हा ही है, और कान्हा की माता जो है अपने आप सब कुछ कर रही है, तो बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन शर्माती है, बड़ी सलज्ज है वो, बहुत लाज बनती है, बहुत शर्माती है, सब लोग सखियां खुश हो जाती है। और फिर वहां से निकलते हैं शाम के समय वापस आने के लिए, बहुत आनंद में ऐसे झूमते हुए निकल आते हैं कि जीवन का सर्वसर्वोच्च प्राप्ति जो आज हो गई है, यशोदा रानी ने हमको भोग के रूप में दिया। तो बरसाने के बॉर्डर में आते ना घोष में आते। अभी मर्यादा नीति सब जा याद आती है, अरे मैं तो पिताजी के बिना माता जी के बिना गई, अपने आप हल्दी लगवा के वापस आई, ये कोई रीति रिवाज है, कोई मर्यादा है। सखियां भी बहुत सतर्क हो जाती है, अरे गड़बड़ हो गया, क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे बाबा, क्या कहेंगे बरसाने के ब्रजवासी, यही सिखाया कन्या को आपने। सब लोग परेशान हो जाते, पूरे आनंद का रूपांतर दुख में हो जाता है, यहां से बैठ जाती है, क्या करें। ललिता जी जो है ऐसे हमेशा संकट के समय पे कुछ नई नई आइडिया निकालती है, उसमें कोई बात नहीं। अगर हाथ की हल्दी की बात है ना, कोई बात नहीं, हम इस कुंड को कुंड में हाथ धो लेंगे, हाथ धो लेंगे साफ करके, किसी को नहीं बताएंगे, केवल हमको चार लोगों को पता है और किसी को पता नहीं, तो हम लोग अपने आप सीमित रखेंगे उस बात को, किसी को नहीं बताएंगे। यहां पर आते हैं, ये कुंड जो है वृषभानु महाराज का कुंड है, इसमें वृषभानु महाराज सब जो रॉयल फैमिली जो है वो यहाँ पर स्नान करते हैं, फ्रेंड्स के मान के लिए प्राइवेट कुंड है राधा रानी के पिताजी का, वहां के अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, वो सब कंफर्म करते हैं कहीं कोने में नाखून में किधर कोई हल्दी तो नहीं है, अच्छी तरह से उसको साफ करके चकाचक करके राधा रानी को अपने घर भेज देते हैं, तो सखी आपके अपने घर चले जाते हैं। अभी ना एक चीज होती है ना, उसको कहते हैं तर्क। तर्क में हमको बहुत चीजें मन में हम लोग महल बना सकते हैं तर्क से, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर उसके बाद में ऐसे होगा ऐसे होगा, पूरी स्टोरी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर सब ब्रजवासी लोग आते हैं अपना अपना काम करने के लिए, काम करने के लिए सब देखते हैं, देखते हैं अरे पूरा कुंड तो पीला हो गया है, कल तो बहुत अच्छा था रंग उसका, पूरा कुंड पीला हो गया है। अभी जो प्रेम करने वाले होते हैं ना, उनका हृदय प्रेम से भरा होता है, वो सरलता से भरा होता है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कपट नहीं है, कभी कभी वो सारी चीज जो है ना उसको अच्छी तरह से बुन सकते हैं। लोग स्वेटर बीनते हैं ना बड़ा आइडिया से, वो एक अच्छी कहानी को बुन सकते हैं अच्छी तरह से। तो वो आते हैं, देखते हैं मन में, अरे सबके मन में ये इच्छा है कि राधा रानी का विवाह कृष्ण से हो जाए, और वाग निश्चय में हल्दी लगती है, उसका रंग पीला होता है, सबको पता है ये बात। तो सोचते हैं कि हाँ राधा रानी वहां जाती है रोज, तो यशोदा रानी ने उनको अपने प्रेम से हल्दी लगाई होगी, फिर शर्माई होगी, फिर यहां पर आके हाथ धोए होंगे, तो चुपकर घर गए होंगे, मतलब राधा रानी को यशोदा माता ने स्वीकार कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल बात यह है, क्या हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, राधा रानी को यशोदा रानी ने स्वीकार कर लिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सब लोग बड़ी खुशी से पागल होकर जाते हैं मैया के पास, बाबा के पास, अरे आपने सुना कुछ? राधा रानी को वाग निश्चय हो गया, सुना आपने? पिताजी को पूछ रहे आगे, तो वो हैरान हो जाते हैं। राधा रानी को पूछते हैं, ये क्या बात है, तो बरसाने गांव में बात कर रही है आपके बारे में, क्या सच है बताओ? बड़े संकोच की बात है ना उनको, वो कहते हाँ ऐसे ऐसे हुआ, वो डर गए कि आपको बता नहीं पाए। मन ही मन वो बड़ी खुशी रहते हैं माता और पिता, अरे जो हमारी मन की बात है ये अपने आप पूरी हो रही है, लेकिन पता नहीं भाव के वश में की गई होगी इन्होंने क्रिया, उसके बाद में फिर उनका मन बदल गया होगा या पश्चाताप करती होगी, पता नहीं क्या है। तो हमको कम से कम उन्होंने जो काम किया है उसके प्रतिसाद में कुछ करना चाहिए। वो एक भंडार खोल देते हैं मोतियों का, और एक भंडार खोलकर एक बैलगाड़ी में भरकर मोती भर के कुछ वाल वालों के साथ में वो भेज देते हैं, भेज रिटर्न रिटर्न इन एप्रिशिएशन। तो यहां पर जब भी यशोदा माई वो सब कम हल्दी लगाने का काम करती है, भाव विभोर हो जाती है, जब राधा रानी निकल जाती है तो धीरे धीरे दामल हो जाती है, फिर उनको होश आता है, अरे ये मैंने क्या किया, मां कीर्ति दीदी से पूछा, ब्रजभानु महाराज से पूछा, किसी की सलाह नहीं की, मेरे पति से भी नहीं पूछा, और ऐसा काम कर दिया तो क्या कहेंगे, क्या मर्यादा, नंदगांव की मर्यादा कहाँ है, यही नीति है उनकी, यही मर्यादा, यही शिष्टाचार है, बिना पूछे किसी की कन्या को हल्दी लगा देना, और फिर उनका कौन शादी करेगा उसका, अगर हमारी शादी नहीं होती तो कौन शादी करेगा, ऐसे उसका ऑलरेडी वाग निश्चय हो गया है। आजकल की दुनिया में तो क्या है, 50 बार शादी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड में अपनी दादी की शादी में पोती जाती है, वेर आर यू गोइंग, इट इज माई ग्रैंड मास मैरिज, दैट टू फिफ्थ मैरिज, ऐसा होता है, तो हल्दी वल्दी होती नहीं वहां पर, एक बार साइन कर लिया फिर साइन मिटा दिया, फिर दूसरा बार दोबारा साइन किया, तीसरी बार साइन मिटा दिया, ऐसा चलता है, वो सिंपल मामला है ये, दिस इज नॉट ह्यूमन कल्चर, हाँ ये मनुष्य की संस्कृति नहीं है, मनुष्य की संस्कृति जो है बहुत श्रेष्ठ है, वैदिक संस्कृति। तो फिर यहां से जब मोतियों की बैलगाड़ी पहुंचती है, यशोदा मणि को जरा मन में शांति होती है, हाँ उन्होंने कम से कम गुस्सा नहीं किया है, हाँ मोतियों की भेंट भेजी है, फिर नया प्रश्न उत्पन्न होता है कि अरे इतने श्रेष्ठ मोती जो है वो हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि ब्रजभानु महाराज जो है नंद महाराज से कई ज्यादा अमीर है, क्यों, कारण क्या इसका, नहीं प्रभु जी, राधा रानी उनके घर में जो है, हाँ सब भाग्य लक्ष्मियों के स्रोत जो है उनके घर में है ना, विष्णु भगवान भी इतने अमीर नहीं थे, राधा रानी अमीर है, सब भाग्य जो है वो राधा रानी के चरणों में है, सब सिद्धियां सब शक्तियां, हाँ परास्त शक्ति विविधा से हुए थे, जब सब शक्तियां जब जो भी सारी शक्तियां क्रियाएं राधा रानी के हाथ में सब, फिर विष्णु महाराज उनको पुत्री के रूप में प्राप्त किए, धन धनी हो गए वो, कहते तो अपने तो पास इतनी मोती नहीं है, तो कन्हैया भी सुन रहे हैं सब माता पिता की चिंता, कैसे करें अभी उनको रिटर्न में क्या भेजें, हमारे पास क्या है, तो कन्हैया कहते इतना चिंता क्यों करते हो, एक मोती दे दो मुझे, मैं खेती करूंगा उसकी और एक खेत बनाऊंगा पूरा, दे दूंगा आपको, भेज दो उनको, अरे बालक है इनको तो क्या पता है, तो क्या है सब, वो देखिए मुझे देखते ना, वो मैं एक चावल का दाना गेहूं का दाना डालता हूँ खेत में, तो उसके करोड़ों दाने बनते हैं, फिर हम लोग उसको खाते रहते हैं, हाँ एक चावल का कहते हैं 250-300 चावल बनते हैं, इस प्रमाण से खेती होती है, भगवान की दया है, तो वो नहीं देते उनको और देते मुझे, सब सोचते हैं कल कुछ करेंगे इसके बारे में। तो हमारे चौरी अग्रगण्य शिरोमणि कन्हैया जी क्या करते हैं, एक मोती चुरा लेते हैं और जाकर घर के पीछे अपने खेत में गड्ढा करते हैं, डालते हैं उसको, मछली डालते हैं, जल देते हैं, अच्छी तरह से प्रार्थना करते हैं, अच्छा खेती हो इसकी, अच्छी फसल बने इसकी, और चले आते हैं। अगले दिन बाबा को बोलते हैं, बाबा मैया चलो चलो देखो कितना सुंदर मोती का पौधा आया, तो वो सोचते हैं बाला के बेचारा, नहीं बहुत जिद करते हैं, नहीं नहीं चलना होगा, अरे नहीं नहीं चलना होगा, चलना होगा, चलो बाजा बाबा बेटे की जिद के लिए चले जाते हैं कि हमने भी बहुत सारे दाने वहां पर डाले हैं खेती के लिए, आया होगा कोई लोग उसका, हम देखेंगे उसको जाके, देखिए बहुत बढ़िया आया हुआ है। अगले दिन कहते बाबा आ जाओ देखो पूरी खेती तैयार है मोतियों की, तो जोर से हंसते हैं माता पिता, अरे ठाका मार के हंसते, देखो वैसे बालक बात करते और मोतियों की खेती करने की बात करते, लेकिन वो जिद करता है, नहीं नहीं बाबा आओ आओ आओ, तो हाथ पकड़ के लेके जाता है, क्या देखते हैं पूरा खेत जो है मोतियों से भरा, चमकते हुए प्रकाश से आवाज से भरे हुए मोती जो है सब जगह फैले हुए, जहां जरूर बिंदु लगते हैं, कभी सोचते थे कि बालक है, समझ में नहीं आता है, तो मुझे दिखते हैं आंखों के सामने, तो धराधर उसको बिनते हैं, पूरी बैलगाड़ी भर देते हैं उससे और रिटर्न कर देते हैं, तो ऐसा है हमारा बुद्धि जो है ना, हमको शायद कुछ यकीन नहीं करेंगे, अरे भगवान की भक्ति में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जब आंखों से देखेंगे ना तो सारी बुद्धि फेल हो जाती है वहां पर, थोड़ा हमको स्वीकार करना आई विटनेस। तब तक तो बातें चल रही थी, मोती आ रहे हैं मोती आ रहे हैं, बोले ऐसे ही किसी का ऐसा होता नहीं है, कोई मोती खेती करता है क्या? लेकिन जब आंखों से देखा तो अपनी बुद्धि के दर्द को बाजू में रखा, तुरंत मोती बिनना जो फल है उसका, उसको इकट्ठा करना आरंभ किया, भेज दिया। तो यहां पर भी चिंतित थे, पता नहीं हमने भेद भेजा उसका रिएक्शन कैसे होगा। तो यहां पर मोती आए तो फिर वो सोच लिया कि हाँ अभी दोनों तरफ से राजी है, रजामंदी है, बहुत खुश हो गए सब लोग। राजा रानी उन मोतियों को लेकर डबारा गांव में, राजा देवी का गांव है, और डबारा गांव में उन्होंने, राजा रानी ने मोती बोकर रत्नों की खेती की है, मोती लगाए और रत्न उपज किया उससे, और सारे रत्न कुंड है बहुत सुंदर, इसके किनारे पे राजा रानी रत्नों की खेती की। इस प्रकार से आदान प्रदान करते रहता है। और फिर कहते अभी इनफ कंफर्मेशन हो गया कि दोनों तरफ से रजामंदी है, अभी कुछ आगे बात बढ़ाई जाए, इसलिए सब गोपियां जो है वो पूर्णमासी को मिलती है, तो पूर्णमासी को कहती है कि मुहूर्त निकालो, अभी अच्छा वातावरण है, सब रजामंदी है, सब लोग राजी हैं, तुरंत इनकी शादी होने के लिए, क्योंकि पूर्णमासी जो है ना वो योग माया है, कोई योग माया करता है, पार्वती जी है और शिव जी की पत्नी है, और उनकी विशेष सेवा यहाँ पर क्या है, एक तो वो शांतिपर्णी की माता है, नंदीमुखी और मधुमंगल उनके पोता और पोती है, शांतिपर्णी के पुत्र और पुत्री है, और सब गोपियों के गुरु है, यशोदा से लेकर तुलसी मैया से लेकर सब गोपियों, तो वो कहती है वो जानती है कि ब्रज का जो रस है यहाँ का, वो लुका छुपी छुप छुप के मिलना, कोयल बन के मिलना, पंछी बन के मिलना, इशारे करना, हाँ भाग जाना, यही ब्रज का परकीय भाव है। एक बार विवाह हो गया तो फिर तो ऑफिशियल हो जाएगा ना, फिर कहाँ छुपके मिलेंगे, तो ओपनली मिलेंगे, फिर ब्रज का आनंद जो है वो सब खत्म हो जाएगा, तो ये समय नहीं है सब आनंद नष्ट करने का, अभी इसको ऐसे रहने दो। वो कहते हैं कि अभी जो आकाश में जो तारे हैं वो गलत जगह पे बैठे हैं, अभी वो जो मुहूर्त वगैरह नहीं निकलेगा, अभी शादी अगर करेंगे तो यशस्वी नहीं होगी, नहीं अच्छा बनेगा मामला, तो उसको टाल देती है, सब लोग नाराज हो जाते हैं। फिर गोपियां जाकर जमुना किनारे कार्तिक महीने के पश्चात 30 दिन का कात्यायनी व्रत करती है, उसने भगवान को पति के रूप में पाने के लिए, तो उसके बाद लंबी लंबी कहानियां हैं, उसके बाद में भगवान उनके प्रेम को प्रतिशत देने के लिए चिरहरण करते हैं जमुना जी में, और चिरहरण के पश्चात वो गोपियों को रास में प्रवेश देते हैं तीसरे दिन, और वो जो गोपियां थी जिनका चिरहरण किया भगवान ने, वस्त्र हरण किया है, वो वेद रूपा थी, वेद रूपा मतलब जो वेद जो है वेद, वो भी राधा कृष्ण की लीला का था नहीं लगा सकते, दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दी लीला ऑफ लॉर्ड, तो वो वेद रूपी जो लीला गोपियां हैं उनको कहते हैं श्रुतिचारी गोपियां, श्रुति यानी वेद ज्ञान, तो श्रुतिचारी गोपियां जो हैं उनको भगवान जमुना किनारे स्नान करते हुए जाकर उनका वस्त्र धारण करते हैं, और तीसरे दिन उनको रास में प्रवेश देते हैं। तो कथा तो अनंत है, इसके आगे तो अनंत लीला है, लेकिन हम लोग उसको इस कथा को यहाँ समाप्त करते हैं, और अगली कथा जो है इस जगह की वो ऐसी है कि ये जो जब हाथ धोने का समय काम हो गया और शादी गरी पोस्टपोन हो गई, तो कृष्ण भगवान वहां व्याकुल हो गए, वो तो वहां पर रह सकते नहीं है, वो अलग अलग रूप धारण करके यहाँ पर आते रहते हैं, तो ऐसे आ गए वो ढूंढते ढूंढते, और देखा अरे इतना सुंदर पीला कुंड है, थोड़ा आश्चर्य होता है ये पीला रंग क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस, ये किस प्रकार का रंग है, थोड़ा आश्चर्य होता है, वो समझ नहीं आता, लेकिन पीला रंग जो है बहुत मेरे हृदय को आनंद दे रहा है, पता नहीं क्यों बहुत हृदय को आनंद विभोर कर रहा है, मैं तो प्रेम विवल हो रहा हूं, प्रेम की फुहारे हृदय में उठ रहे हैं, क्या है क्या ये पीली वस्तु क्या है, ऐसे करके करके इस सीढ़ी से उतरते हैं, और आसमान में वातावरण में एक ही प्रश्न गूंजता है उनके मुंह से, ये पीली वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस, सब लोग बोलो व्हाट इज द येलो सब्सटेंस, ये पीली वस्तु क्या है, बताओ ये पीली वस्तु क्या है, ऐसे पुकारते पुकारते हाथ ऐसे उठाते हुए प्रश्न के रूप में भगवान इसमें उतरते हैं उतरते हैं, फिर पहले पैर उतरते हैं उनके, फिर उनके घुटने उतरते हैं, फिर कमर उतरती है, शरीर उतरता है, फिर गला तक जाते हैं, फिर अंदर और घुसते जाते हैं घुसते जाते हैं घुसते जाते हैं, नाक तक पानी आता है, नाक के ऊपर जाता है, फिर भी वो जा रहे हैं पानी में, और एक क्षण ऐसा आता है कि पानी के ऊपर केवल 3 चीजें हैं, 2 हाथ और 1 मोरपंख, ऐसे पूरे जल में ऐसे घूम रहा है, देखिए प्रश्न हवा सब वातावरण में गूंज रहा है, ये पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है। फिर कुछ देर बाद वो दो हाथ और मोरपंख जो है बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आता है तो अलग ही वस्तु बाहर आता है। गया था सामने रंग का, निकला गोल्डन रंग का, पूरे स्वर्णमयी पीले रंग के बनकर वो बाहर आते हैं। तो फिर भी ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन है, कौन है ये पीली वस्तु, कौन सी है, कौन है ये पीली वस्तु। सब ब्रजवासी आके देखते हैं, क्योंकि वो आवाज सुनते हैं ना, तो एक अद्भुत दृश्य देखते हैं कि कन्हैया जी जो सामने रंग के हैं, मोर पंख धारी है, एकदम सुनहरे रंग के, राधा रानी के रंग के हो गए हैं, और फिर भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं क्या है ये वस्तु, क्या है। और उस पीले रंग के रूपांतर से, स्वर्ण रूपी पीले रंग के रूपांतर से उनको एक अद्भुत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ही एक्सपीरियंसेस डिवाइन प्लेजर विच इज नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। ही इज वंडरिंग व्हाट इज दिस, ये क्या वस्तु है, तो मैं नहीं जानता, मैं सर्वज्ञानी हूं, सब ज्ञान मेरी ओर से आता है, लेकिन ये वस्तु क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। हमारे रूपा जी के शिष्य हैं बरसाना महाराज, हिज होलीनेस, उन्होंने कहा इस जगह पर पहली बार कृष्ण भगवान ने ये दुनिया को दिखाया कि मैं अभी इसी अवतार में आगे आने वाला हूं, इस प्रेम का अनुभव करने। तो वो पीला सब पीली वस्तु क्या है बताओ, गौरांग महाप्रभु जी, पीली वस्तु क्या है जिसका भगवान बार बार पूछ रहे हैं प्रश्न। प्रेम और सेवा, प्रेम और सेवा का भाव है, जिसके लिए भगवान भी व्याकुल है, राधा रानी के चरणों की वो सेवा करना चाहते हैं। ये प्रेम जो राधा रानी के हृदय में है, इसको भगवान भी नहीं जान सकते हैं। वो जानने की कोशिश करने के लिए उन्होंने इनके भाव को स्वीकार करके स्वयं अवतार लिया कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बलराम जी का बुला लिया नित्यानंद प्रभु के रूप में। आज नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, नित्यानंद प्रभु भी आविर्भावित हो गए। सब लोग उस प्रेम को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए, वो जो पीली वस्तु है उसको समझने के लिए। भगवान उसको समझ गए, लेकिन फिर भी वो अनंत वस्तु है, अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है राधा रानी का प्रेम। क्योंकि जैसा प्रेम अनंत है, वैसे प्रेम पूर्ण सेवा भी अनंत है, और राधा रानी की प्रेम पूर्ण अनंत सेवा जो है वो हमेशा अनंत रूप में बढ़ती रहती है। तो कभी पूरी तरह से उसको जान लेना मुश्किल है, राधा रानी स्वयं नहीं जानती उसके अंदर कितनी सेवा भाव, कितना प्रेम। ये भी यहां पर लीला हुई है। तीसरी लीला यहां पर ऐसे हुई है कि अभी होली चालू है, वसंत पंचमी से होली शुरू हुई है, 40 दिन की होली चलती है यहां पर। तो नंदगांव से नौता आता है, एक पंडा आता है, और वो पंडा जो है यहां पर गोपियों को होली के लिए बुलाता है, चलो तो भगवान आपको बुला रहे हैं। तो पंडा को गोपियां मिलकर बहुत दिखती है, बहुत जोरदार दिखती है। पंडा बेचारा होता है, मैं तो केवल दूत हूं, मैंने उनको खबर भेजी थी, अरे उनको तो भेजो, वो क्यों नहीं आ रहे, उनको भेज लो यहां पर। तो वो आ जाते हैं, और यहां पर आकर ठाकुर जी ने राधा रानी को आवाज दी है श्री जी के महल से। और राधा रानी को जब होली खेलने के लिए श्री जी को यहां से पुकारते हैं भगवान, तो श्री जी वहां से अपने महल के बालकनी में आते हैं, खिड़की में आते हैं, और वहां पर से ऐसा लिखा है कि वो चाहते हैं कि पिचकारे से यहीं से उनको पिचकारी मार दे रंग की, लेकिन इतनी ऊंची पिचकारी आती नहीं है, इसलिए रंग की पिचकारी से छोड़कर वो प्रेम की पिचकारी वहां पर पहुंचाते हैं। राधा रानी भी वहां से उनको रिस्पॉन्स देती है, उनका मिलन होता है। इसमें और भी एक कथा है कि एक बार ऐसे ही राधा रानी अपने सखियों को लेकर यहां पर स्नान कर रही थी, तो वहां से कृष्ण आते हैं और ललिता को पूछते हैं ये कौन है, किसकी कन्या है। ललिता जी कहते हैं चले जाए यहां से, कौन आया, नवान मर्यादा नहीं कुछ नहीं, लड़कियां स्नान कर रही, पूछ रहा है किसकी लड़की है, चले जाए यहां से, स्थिति नहीं, मर्यादा नहीं, कोई रिवाज नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं किसका बेटा है, पता नहीं कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया, इतना गवार लड़का, चले जाना। तो वो तो खाली पूछ रहे हैं किसकी लड़की, कुछ भी उनके मन में कोई कपट नहीं है, खाली पूछ रहे हैं। राजा रानी देख रही है ललिता जी इतनी गुस्सा क्यों करते हैं, बड़ा बुरा लगता है उनको, तो क्यों डांट रहे हैं उसको, तो पूछ रहा है खाली ना कौन है, बता ना उनको कौन है, डांटने की जरूरत क्या है, इतना सब आतंक करने की जरूरत है। थोड़ी सी राधा रानी कहते कि आप चले जाओ, आप यहां से अलग स्नान करो, मैं अलग स्नान करो। थोड़ी राधा रानी नाराज हो जाती, राधा रानी बड़ा सरल रही है, किसी को वो दुख नहीं देना चाहती, उनके प्रियत है मैं जानती है। तो वो अलग स्नान करने लगती है, उतने में श्री कृष्ण भगवान जल में प्रवेश करते हैं और जल के अंदर चले जाते हैं, पूरा अंडर वाटर जाकर राधा रानी के चरण पकड़ते हैं और एकदम राधा रानी के मुंह के सामने प्रकट हो जाते हैं, ऐसे एकदम नीचे जाकर ऐसे कुछ राधा रानी बहुत एकदम आश्चर्य से चकित हो जाते हैं, सब सखियां देखती है तालियां बजाती है, तो ये भी लीला यहाँ पर ऐसे अनंत लीला यहाँ पर है। यहाँ पर तो क्या जान सकते हैं हम, ये अनंत लीला का धाम है, यहाँ पर कितनी लीलाएं होती है कितनी हम समझ सकते हैं इसका कोई गणित नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो येलो वस्तु जो है यहाँ की, उस पर हम लोग जरूर ध्यान कर सकते हैं। उस पीली वस्तु को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान यहाँ आते हैं, व्याकुल होकर एकदम क्या कहते हैं उसको अस्थिर हो जाते हैं, एकदम वेरी अनस्टेबल, और हमेशा यहाँ आते रहते हैं उस पीली वस्तु को, उस प्रेम जो प्रेम यहाँ पर खोजने के लिए वो आते हैं। और राधा रानी के हृदय में सागर की तरह बसा हुआ, हमको भी उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए यहाँ आना चाहिए। प्रेम जो है वो सेवा के बीच में स्थित है, बिना सेवा के प्रेम नहीं होता है। लव मीन सर्विस, फॉरलेस सर्विस, पर्पजलेस सर्विस, कोई हेतु नहीं उसके अंदर, विदाउट मोटिवेशन। वो जो अहैतुकी अप्रतिहता, इसमें कोई खंड नहीं है, इसमें कोई स्वार्थी हेतु नहीं है, ऐसी सेवा प्राप्त करने के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं और स्वयं भगवान भी आते हैं। हमें यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए कि जो पीली वस्तु है उसका एक अंश हमें मिल जाए, हम भी अपने जीवन में ठाकुर जी को रिझा सकें, प्रसन्न कर सकें, कृपा प्राप्त कर सकें, उनके चरणों में आश्रय प्राप्त कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ आप लोग उतरिए, आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए और राधा रानी और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें इस पीली वस्तु को परिचय करा दो और हमारे हृदय में उसको बसा दो, हम भी ये पीले हो जाएं जैसे भगवान इसमें से पीले होकर निकले थे। हरे कृष्णा। पीली पोखर धाम की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, निताई को प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे। छोटी सी और बात है आपको यहाँ से आगे जाने के लिए बताने के लिए, अभी हम लोग सब यहाँ से दर्शन करके यहाँ का आचमन करके श्री जी मंदिर जाने वाले हैं। श्री जी मंदिर जाने के लिए जो बड़े बूढ़े हैं उनको जोली करनी है अपने अपने व्यवस्था से, और वहां पर हम शिव जी मंदिर में कथा नहीं करेंगे, शिव जी मंदिर में केवल दर्शन करेंगे। और शिव जी मंदिर में दर्शन क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में आपको वहां सबको सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि पंडा लोग मुझे पकड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको साथ में मैं हूँ और मुझे पकड़ेंगे और परेशान करेंगे, फिर मैं अलग से रहूंगा। आपको क्या क्या देखना है याद रखना, एक तो श्री जी महाराज का दर्शन करना है आपको, जाने के पहले ऊपर पहले कामधेनु का दर्शन है वो करना है, और कामधेनु से आगे जाएंगे तो ब्रह्मा जी का दर्शन है वो करना है आपको। ब्रह्मा जी के थोड़ा सा नीचे एक थोड़ी सी जगह है, वहां पर राधा रानी के चरण चिन्हों का दर्शन है, वो आपको जरूर करना है। और इस पर्वत को चढ़ने के पहले आपको ब्रह्मा जी को बड़े नम्रता से वंदन करना है कि आपके ऊपर हम चढ़ रहे हैं, माफी देना, माफी चाहते हैं। और फिर मंदिर के पीछे जाएंगे आप गोल घूम के, तो वहां पर एक सिंहासन, और उस सिंहासन पर खड़े होकर 7 किलोमीटर दूर नंदगांव का दर्शन होता है, अगर धुंध नहीं होगी तो दिखाई पड़ेगा आपको, और वहां से राधा रानी कृष्ण भगवान को इशारे करा किया करती थी सिग्नल, क्या सिग्नल पता नहीं मुझे क्या करती थी, तो उनको ही मालूम क्या होता है उनके बीच में, लेकिन वहां सिग्नल करती थी वो राधा कृष्ण भगवान को, और वहीं पर उनके चरण चिन्ह भी हैं, और वहीं से लेफ्ट साइड में उनका गांव का दर्शन भी होता है जहां पर ललिता जी विराजती हैं। और शिव जी मंदिर में चरण चिन्ह हो गए, कामधेनु हो गई, ब्रह्मा जी और सिंहासन, और नीचे एक छतरी है, नीचे भगवान राधा रानी के मंदिर में जाने के पहले दास सीढ़ियों की पहले एक सीढ़ी है, एक मंदिर है संगमरमर का बना है, वो जो मंदिर है उसमें साल में 3 बार सीढ़ी आती है, एक हरियाली तीज के दिन, एक राधाष्टमी के दिन, एक होली के दिन, और उस दिन हर एक जाति के व्यक्ति जो है वो आके भगवान राधा रानी की सेवा करते हैं, तो वो भी एक स्थान वहां पर नीचे। और ये मंदिर जो है शिव जी का, ये कुछ 50 साल पहले हरगुलाल बेरीवाला इस व्यक्ति ने उसको बनाया था बहुत सुंदर, और अभी कुछ 10 साल पहले राधा कृष्ण राधा माधव संकीर्तन मंडली जो जानकीनाथ आनंद ऐसे बहुत सारे भक्त यहाँ पर थे, उनमें उनको मिले हम उनको, उन्होंने फिर ये अभी का जो रेनोवेशन है आगे का जो मंडप बनाया है लाल पत्थर से बना हुआ है वो रेनोवेशन किया है, और राधा रानी के जो विग्रह हैं उसको बज्रनाभ जी ने बनाए थे, बज्रनाभ अनिरुद्ध के पुत्र हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हैं, प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हैं, तो बज्रनाभ भगवान के नाती हैं, शरणार्थी, और उन्होंने इस राधा रानी के विग्रह को बनाया, लाडली लाल जी का नाम है, उनको स्थापन किया। इस समय के पश्चात ये लाडली लाल जी जो है वो लुप्त हो गए। फिर नारद मुनि के अवतार हुए, नारायण भट्ट गोस्वामी, जो ऊंचे गांव में रहा करते थे, उनका ऊंचे गांव में समाधि है और वहीं वो उनका लीला है। तो नारायण भट्ट जी अपने निकल दिया उसको, पता चल रही है। नारायण भट्ट जी के स्वप्न में राधा रानी आई, उन्होंने कहा कि हम इस भानुगढ़ में पत्थर में हैं, हमको खोज के आप निकालो। तो फिर नारायण भट्ट जी महाराज ने बहुत सावधानी से खुदाई करके राधा लाली लाल के विग्रह जो है वो प्रकट किए हैं और मंदिर में स्थापना किया है, और साथ अपने ललिता जी और विशाखा का भी वहां पर विग्रह है। आप देखे हुए ना मंगल आरती में जब आरती होती है तो बहुत देर तक राधा कृष्ण की आरती होती है, फिर एंड में वो ऐसे काटकोन में टर्न हो जाते हैं 90 एंगल में, और फिर आरती अंदर की तरफ जाते हैं। वो विशाखा देवी का उधर मूर्ति है, विजय लाडली जी कहते हैं उसको, विजय लाडली जी, उसकी कहानी में ऊपर बताऊंगा आपको, और मुझे याद करना विजय लाडली की कहानी बतानी, तो मुझे भूल जाता हूँ मैं। वो आरती करते हैं फिर आपकी तरफ आरती घुमाते हैं, है ना। तो वो विजय लाडली जी विशाखा देवी वहां पर मूर्ति, और बहुत सुंदर दृश्य है। राधा रानी को प्रार्थना करना कि हमें बार बार बुलाएं, उनकी सेवा दें। ये जो है वो परमोच्च धाम है, क्योंकि जो परमोच्च धाम जिसको प्राप्त करने आते हैं हम लोग, वही स्वयं आकर यहाँ पर कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं कृष्ण भगवान। ये परमोच्च धाम है दुनिया का, इसके ऊपर कोई परमोच्च धाम नहीं है। इसलिए आपकी जितनी प्रार्थना है हृदय की, किसी के लिए प्रार्थना करनी है आपको, हृदय में कोई प्रश्न है, कोई किंतु है, कृपा चाहते हैं, गिड़गिड़ाना है, रोना है, वो सब वही करना है आपको, वही सब रिपोर्ट करना है उसका, परम स्थान है। वहां जाने के बाद और कहीं जाकर मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, और अंतिम चरम स्थान है, इसे लास्ट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट मर्सी इज अवेलेबल के। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, और आप सबको बधाई है, सब लोगों के प्रेम से आप श्री जी मंदिर चढ़ना। वहां पर कभी भी सॉरी मैं किसी का अपराध नहीं करना चाहता, लेकिन जब पंडालों आपको तंग करेंगे तो आपको गूंगा बहरा बनना है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगर देना है दे सकते हो, कोई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको देने के बाद भी अगर तंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल तत्प्रज्ञ होकर, हाँ, बताने की सेवा करके आप अभी योगी बन गए होंगे, तत्प्रज्ञ बनकर आपको आगे जाना है। डोंट वेस्ट टाइम, बोलेंगे आपके लिए यही है राधा रानी ने आपका नाम कहा है आपको देना है, बोलेंगे अब दे दो, मैं देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे आपकी प्रार्थना में थोड़ा भंग हो सकता है। तो प्रार्थना में राधा रानी के ऊपर ध्यान जो है ना वो हटाने के लिए माया देवी आपको ऐसे विचलित करेगी, आपका ध्यान राधा रानी को होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। फिर वहां से हम लोग चलेंगे बाहर, बहुत समय वहां बिताना नहीं है, बहुत लंबा लंबा समय चलना नहीं है आपको, फास्ट फास्ट चलना है, क्योंकि आज आधा दिन ही मिलेगा आपको, यात्रा समाप्त होने के पहले अधिक से अधिक आपको बताने की मेरी इच्छा है। तो वहां से हम आगे चल के जाएंगे कुशल बिहारी मंदिर में, अगला डेस्टिनेशन हमारा श्री जी मंदिर के बाद में कुशल बिहारी मंदिर, जयपुर मंदिर के छत पे हमारी कथा होगी, ठीक है। जय जय श्री राधे। और अगर ब्रेकफास्ट अगर आपको लेना है